गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Thank you.
जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि सन्यास के पहले निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे 11 वर्ष के आयु से ही अन्य छात्रों को पढ़ाने लगे। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विद्वान थे और ऐसे जब थोड़े वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया उसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरे गृहस्थ आश्रम के लिए धनार्जन करना आवश्यक है, तो वो बांग्लादेश में गए जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पूर्व बंग। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक शिष्यों को बहुत कुछ पढ़ाया और वहीं पर एक कृष्ण भक्त थे, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था तपन मिश्र, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्र साधन और साध्य के बारे में निर्धारण ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनको स्वप्न में बताया गया एक ब्राह्मण या एक देव के द्वारा कि आप निमाय पंडित के पास जाओ, वह स्वयं भगवान है और वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। परंतु इस रहस्य का खुलासा किसी से नहीं करना है आपको, किसी को नहीं बताना कि ये स्वयं भगवान है। तो तपन मिश्र उनके पास आए, महाप्रभु ने उनको साधन और साध्य इन दोनों तत्वों के बारे में बतलाया और साथ साथ में उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भी कहा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक है जो हम सब जानते हैं, इस श्लोक को श्री निमाय पंडित ने तपन मिश्र से कहा और इसके बाद उन्होंने संपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनको सुनाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, चैतन्य चरितामृत में ऐसे कहां पे पूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख किया गया है? ऐसा कौन सा स्थान है चैतन्य चरितामृत में जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र को कहते हैं, कोई बता सकते हैं? बताइए कहां पे उल्लेख है। प्रकाश आनंद संवाद में क्या उल्लेख, पूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख है। हरे कृष्ण पूरा जो 32 अक्षर 16 शब्दों का महामंत्र, जैसे हम जप कीर्तन करते हैं वैसे ही है। तो कौन से अध्याय में, कौन से लीला में है? उत्तर है कहीं भी नहीं है। परंतु इसलिए भक्त पूछते हैं कि फिर कहां लिखा है ऐसे, चैतन्य भागवत में है। चैतन्य भागवत में पहली बार निमाय पंडित तपन मिश्र से ये हरे नाम श्लोक के बाद फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख करते हैं। साथ साथ में यद्यपि चैतन्य चरितामृत में इसका स्पष्टता से उल्लेख न हुआ हो, नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम इत्यादि ऐसे अनेक शब्द कहे गए हैं, परंतु परंपरा में आते हुए ये हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको मिल रहा है। इसलिए क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये संपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये प्रामाणिक नहीं है। कौन से शास्त्र में पाया जाता है ये? कली संतरण उपनिषद। तो ये एक प्रामाणिक वैदिक मंत्र है और महाप्रभु ने या निमाई पंडित ने तपन मिश्र को इस महामंत्र का उल्लेख करने के बाद ये बताया कि ये मंत्र महामंत्र है और इस मंत्र का उल्लेख करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे प्रत्येक युग में कोई एक युग धर्म होता है, तो इस युग में केवल हरि नाम लेना चाहिए और विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप में और कीर्तन में करना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति सोचता है कि हरे कृष्ण महामंत्र हम कैसे भी कर सकते हैं, वो सही नहीं है। ये बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए। यदि कोई केवल मनोरंजन के लिए करे या तो फिर इस उद्देश्य से करे कि इससे मैं कुछ लाभ प्राप्त करूं, तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो खैर, अभी निमाई पंडित ने महामंत्र का उपदेश दिया और कहा कि आप निरंतर कृष्ण की सेवा करना और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और जब आप वाराणसी जाओगे, क्योंकि उस समय महाप्रभु ने आदेश दे ही दिया था उनको, तपन मिश्र ने कहा था मैं आपके साथ नवद्वीप जाऊंगा, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आप वाराणसी जाओ, मैं आप बाद में आके आपसे वहां मिलूंगा। और उस समय महाप्रभु ने कहा कि स्वप्न में जो आपने देखा मेरे बारे में कि मैं कौन हूं वास्तव में, ये किसी से नहीं कहना। दो बार महाप्रभु ने कहा उनसे, गोपनीय रखना इस बात को। इसलिए यद्यपि महाप्रभु ने वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन अपने पूर्व बंगाल की यात्रा से ही प्रारंभ किया था, फिर भी ये बात छुपी हुई रही और खुलेआम इस महामंत्र का आंदोलन वास्तव में महाप्रभु के गया यात्रा और उनकी दीक्षा के बाद हुई। तो खैर, इस प्रकार से वहां से धन एकत्र करके वो लौट के चले आए। और इधर तब तक क्या हुआ, लक्ष्मी प्रिया का तिरुभाव हो गया था, जो कि उनकी पत्नी थी, क्योंकि वो उनका विरह सहन नहीं कर पाई थी। और आगे चल के जब वो लौट के आए यहां पर, तो उन्होंने अपना शिक्षण जो है वो जारी रखा। तो चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाय पंडित ने मुकुंद संजय नाम के एक महान भक्त के घर में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उस समय इस तरह के ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नहीं होती थीं, सबके अपने अपने स्वतंत्र घर होते थे और हर एक घर के सामने एक आंगन हुआ करता था। आंगन में छोटा सा मंडप होता था, तुलसी महारानी भी विराजमान होती थी। उस मंडप को कभी कभी चंडी मंडप या दुर्गा मंडप कहते थे। फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उनके घर में चंडी मंडप था तो मुकुंद संजय भी एक शाक्त थे। शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक, वो तो परम वैष्णव थे, परंतु उस समय ऐसे आंगन को चंडी मंडप कहा जाता था, तो वहाँ पर निमाय पंडित बैठ के शिष्यों को अपना उपदेश देते थे। और इस प्रकार से इतनी सुंदरता से, विद्वत्ता से वो सब समझाते थे, सभी लोग अवाक रह जाते थे। अवाक अर्थात जिसको जब जो कोई चीज़ सुनने से जब हमें कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता, वाक वाक मतलब हमारे शब्द, शब्द नहीं रहते बोलना बोलने के लिए, तो उसे अवाक कहते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब भी निमाय पंडित किसी ऐसे एक लड़के को देखते जिसने तिलक धारण नहीं किया होता तो उसको डांटते वो। और इस तिलक के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। अनेक वर्षों पूर्व इसी तात्पर्य के बारे में मैंने यहाँ विस्तार में चर्चा की थी, परंतु अब वो पुनः लंबी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। संक्षिप्त रूप में कहना ये यहाँ पर्याप्त होगा कि महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति तिलक धारण नहीं करता है वो एक श्मशान की तरह है, श्मशान भूमि की तरह है। और तिलक का महत्व क्या होता है ये उन्होंने बताया। प्रभुपाद जी भी अक्सर कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के लक्षण अनेक हैं, उनमें से एक लक्षण ये है कि जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि स्नान करने के बाद ही मैं समाज में सबके सामने उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अवश्य स्नान करके ही लोगों के सामने आना चाहिए, सही है, परंतु वो उचित है परंतु पर्याप्त नहीं है। स्नान करने के बाद तिलक भी धारण करना चाहिए, तब अन्यों के सामने आना चाहिए। तो आजकल लोग तिलक के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ना ग्रहण करते हैं तिलक को। तो निमाय पंडित ने उन बच्चों को वापस घर भेज दिया कि वापस घर जाओ, स्नान करो, फिर अपने जो तिलक आदि है मंत्रों का पाठ करो, फिर यहाँ वापस लौट के आ जाओ। तो इस तरह से जब उनको डांट पड़ती थी तो हमेशा याद रखने लगे कि हाँ, अभी हमें रोज तिलक धारण करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले तिलक धारण करना चाहिए। अभी आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि रात को सोने के पहले आप स्नान करते हैं, ऐसे कभी कभी होता है ना, तो स्नान करके फिर आप सोने जाते हैं, तो उस समय क्या तिलक धारण करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मुझे कोई देखेगा नहीं तो अब तो सोने ही जा रहे हैं तो तिलक की आवश्यकता नहीं है, चलो सो जाते हैं। कोई नहीं देखेगा का क्या मतलब? अन्य इंसान नहीं देखेंगे, लेकिन कौन देखेंगे? यमदूत देखेंगे, भूत प्रेत पिशाच देखेंगे, बहुत और देखने वाले हैं, देखने वालों की कमी नहीं है। इसलिए सदैव तिलक होना चाहिए। और जो अपने अपने दफ्तरों में जाते हैं या किसी और अन्य सामाजिक कारण से सबके सामने तिलक धारण करके नहीं आ सकते हैं, ऐसे यदि कोई विचित्र परिस्थिति हो जाए, और कैसे होता है आजकल, तो हल्का तिलक पहन लें, धारण कर लें, और वो भी संभव नहीं है तो कम से कम जल से कर लें, इतना तो करना चाहिए सबको। तो खैर, इस प्रकार से निमाय पंडित ने सबको डांटना जब शुरू कर दिया तो सारे बच्चे जो है ठीक ठाक स्नान के बाद तिलक धारण करके आने लगे। और क्योंकि उस समय याद रखिए निमाय पंडित भी किस आयु के थे? किशोर अवस्था के थे निमाय पंडित भी उस समय। ये कैशोर लीला चल रही है ना, याद है ना, कल हमने कहा था कि हम कैशोर लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। तो 11 से 15, तो उस समय भी लड़के इतने परिपक्व नहीं होते हैं, शरारती होते हैं, खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो निमाय पंडित भी ऐसी मजाक करते थे। और अब पूर्व बंगाल से आ गए थे तो पूर्व बंगाल के लोगों की जो बंगला भाषा है वो पश्चिम बंगला बंग के जो लोग हैं उनके उच्चारण से काफ़ी अलग है। तो महाप्रभु ने जब ये सुना तो मजाक उड़ाते थे उनका। और यहाँ नवद्वीप में भी ऐसे कोई लोग थे जो श्रीहट्ट नाम के गांव से थे, सिलहट, जो आज सिलहट के नाम से जाना जाता है, श्रीहट्ट। श्रीहट्ट से बहुत बड़े बड़े भक्त भी आए महाप्रभु के। तो वो जिस तरह से बंगला भाषा बोलते हैं तो वो सुनकर सब लोग हंसते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बंगला भाषा का मजाक उड़ाते थे। तो यहाँ भी हम देखते हैं, किसी भी भाषा को देखिए, मैसूर की कन्नड़ में और बीजापुर की या बेलगाम की कन्नड़ में अंतर है ना, है ना, बहुत बड़ा अंतर है। उसी तरह से पुणे की मराठी में, बेलगाम की मराठी में अंतर है ना, यायलय जायलय मी येत आहे, यायलय नहीं तो जायलय, जायलय नहीं जात आहे, बरोबर है ना। तो पुणे की मराठी में, बेलगाम की मराठी में या कन्नड़ में, किसी भी भाषा में आप देखिए, ऐसे कहा जाता है कि 10-10 12-12 मील में भाषा का अंतर होता है, भाषा बदल जाती है। तो उसी तरह से यहाँ जब वो श्रीहट्ट के निवासियों का मजाक उड़ाते थे और भाग जाते थे तो ये लोग, इन लोगों को बहुत गुस्सा आता था। तो ये इनका गुस्सा आके उनको निमाय पंडित का पीछा करते थे, परंतु निमाय पंडित तेजी से भाग के चले जाते थे। और कभी कभी उनसे बोलते थे, अरे निमाय तुम्हारे माता पिता कहाँ से आए। वो भी श्रीहट्ट के थे वास्तव में, परंतु यहाँ बसे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो नवद्वीप में हुआ था, यद्यपि उनके माता पिता तो श्रीहट्ट के थे, परंतु निमाय पंडित यहीं के थे, यहीं के जन्मे हुए थे। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारतीय लोग जब विदेश में जाते हैं और उनके बच्चों का जन्म वहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में, तो उनके बच्चे वहीं की तरह अंग्रेजी बात करते हैं, उसी तरह से। तो उनका जन्म वहाँ हुआ तो उस तरह की भाषा बात करते हैं। तो निमाय पंडित नवद्वीप की बंगला भाषा बात करते थे। तो वो कहते थे कि आपके माता पिता कहाँ के हैं, वो भी श्रीहट्ट के हैं, और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। कभी कभी उनको पकड़ लेते थे, धोती उनको पकड़ लेते थे, धोती पकड़ के उनको वहाँ जो कोई अधिकारी व्यक्ति होते थे सरकार के, नवाब के, उनके पास ले जाते थे। फिर निमाय पंडित के जो शिष्य हैं, भक्त, जो अन्य मित्र हैं, वो आके किसी न किसी तरह से कुछ समझौता कर देते थे और उनको छुड़वा देते थे। और कभी कभी जो लोगों के घर में तरह तरह के कद्दू और फल होते थे वो जाके फोड़ के चले जाते थे। इस तरह से ये शिकायत करते, ये शरारत करते थे। अपनी कैशोर लीला में इन सारे लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। और आगे चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं कि सची माता बहुत चिंतित थी कि अब मेरे बच्चे की पत्नी लक्ष्मी प्रिया का निधन हो गया, तो अब मेरा बच्चा जो है बहुत कम आयु का है, पुनः विवाह कर लेना चाहिए इसे। तो फिर महाप्रभु तैयार हुए। चैतन्य चरितामृत में केवल इतना ही उल्लेख है, परंतु बहुत विस्तार में चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। तो इतना लंबा वर्णन है, प्राय एक पूरा अध्याय इसके बारे में है, और बहुत ही बारीकी से कौन से व्यवस्थाएं हुई थी, कैसे सब कुछ सजाया गया था, किसको क्या खिलाया गया था, सब चीज़ों का वर्णन हुआ। परंतु संक्षेप में इतना ही कहेंगे कि विष्णु प्रिया जो दूसरी पत्नी बनी निमाय पंडित की, वो सनातन मिश्र ऐसे बहुत ही शुद्ध और धर्मपरायण ब्राह्मण की पुत्री थी। वो भी प्रतिदिन जाके गंगा में 3 बार स्नान करती थी, और बहुत उनका व्यवहार जो था बहुत विनम्र था और वो शालीन थी। तो जब भी सची माता को देखती थी, चरणों को स्पर्श का स्पर्श करती थी, और सची माता से मन में सोचती थी कि काश ये लड़की मेरी बहू बन जाए। तो एक बार सची माता ने काशीनाथ पंडित को बुलाया, हर समाज में आजकल भी ऐसे होते हैं, कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हर एक समाज में लोग, उस समाज के लोग उनके पास जाते हैं, देखो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बताओ। हर एक समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो ब्राह्मण होते हैं कभी कभी ऐसे। तो काशीनाथ पंडित एक ऐसे व्यक्ति थे, तो सची माता ने कहा कि ऐसे मेरे निमाई के लिए कोई देखो, कोई हो सके तो। लेकिन हाँ, मैं अपने मन की बात बताऊं, सनातन मिश्र से जाके आप पूछिए कि क्या वो अपने पुत्र, अपने पुत्री का विवाह निमाई से करना चाहते हैं क्या। तो काशीनाथ पंडित तुरंत गए, और जब सनातन मिश्र ने ये बात सुनी तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। तो उन्होंने कहा, निश्चित ही मेरा तो अहो सौभाग्य है कि मेरे पुत्री का विवाह निमाई पंडित जैसे एक इतने बड़े विद्वान और अच्छे व्यक्ति से हो। तो उधर खबर फैल गई। अब निमाई पंडित के घर में अब धन तो आ गया था, परंतु उनके जितने भी हितैषी थे वो सब आगे आए कि हम विवाह का खर्च देख लेंगे। तो उनके पड़ोस में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था बुद्धिमंत खान। खान मतलब ये हिंदू ही नाम है, परंतु उस समय ऐसे एक नाम होता था, बुद्धिमंत खान, रामचंद्र खान ऐसे होता था। तो बुद्धिमंत खान जो हैं ये एक धनी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सारा खर्च उठा लूँगा इसका। तो अन्य जो भक्त थे उन्होंने कहा, फिर हमारा क्या होगा, हम भी तो करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे भक्त जो हैं, अन्य भक्त, इतने धनी नहीं थे। तो बुद्धिमंत खान ने कहा कि देखो, ये विवाह किसी अन्य व्यक्ति की तरह साधारण विवाह नहीं होगा, मैं इतने धूमधाम से मनाऊंगा इसको कि लोग याद रखेंगे इसको। तो फिर वास्तव में जैसे बुद्धिमंत खान ने कहा था वैसे ही हुआ, और फिर विष्णुप्रिया देवी और निमाई पंडित का विवाह बड़े आनंद से हुआ वहाँ पर। अब आगे चल के कविराज गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने एक दिग्विजयी पंडित का पराजय किया, और अब प्रारंभ होगा एक अद्भुत लीला का, जिसमें निमाई पंडित ने केशव काश्मीरी नाम के एक दिग्विजयी पंडित के अभिमान को या मान को भंग कर दिया। अब ये व्यक्ति कैसे था, यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं, तौबे विष्णु प्रिय ठाकुरानी परिणय, तौबे तो कोरिल प्रभु दिग्विजय जय। तो विष्णु प्रिया के विवाह के बाद में उन्होंने एक दिग्विजय पंडित के ऊपर विवाह किया, श्रील प्रभुपाद के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आधुनिक काल में जिस प्रकार से खेल और क्रीड़ा के क्षेत्र में लोग ऐसे श्रेष्ठ लोग होते हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और किसी को स्वर्ण पदक मिलता है, किसी को रजत पदक मिलता है, तो ठीक उसी प्रकार से उस काल में ऐसे वाद विवाद की स्पर्धाएं होती थीं, और बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मण ऐसे प्रतियोगिताओं में आते थे, और एक व्यक्ति, एक विद्वान दूसरे विद्वान को चुनौती देता था कि चलो मेरे सामना करो, हम तर्क करते हैं। और फिर कोई एक मध्यस्थ व्यक्ति रहता था जो निर्णय लेता था, वो भी बड़ा विद्वान होता था, नहीं तो समझेगा कैसे कि क्या हो रहा है, और वो निर्णय लेता था कि कौन विजयी हो गए हैं। तो ऐसे ये एक विजयी, एक दिग्विजयी पंडित था। उनका नाम दिग्विजयी पंडित क्यों रखा गया, दिग्विजयी, दिग अर्थात दिशाएं, आठों दिशाओं में घूमकर उन्होंने जितने भी प्रांतों में वो गए, वहां पे जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उन सबको वाद की प्रतियोगिताओं में हरा दिया। इसलिए दिग्विजयी, सारे दिशाओं को जीत लिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम रखा हुआ दिग्विजयी पंडित। और वैसे उनका नाम था केशव, केशव पंडित। क्योंकि वो कश्मीर के थे तो उनका नाम केशव कश्मीरी हो गया. आज कश्मीर काफी खबरों में है, आप में से कई लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो उस समय कश्मीर में बहुत सारे शैव और सूर्य उपासक आदि हुआ करते थे. शारदा पीठम आदि आज भी है वहाँ पर. रामानुजाचार्य बोधायन वृत्ति ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए पैदल उडुपी से नहीं और भी दक्षिण से मेलकोटे से वहाँ गए थे, कश्मीर गए थे. और वहाँ पर शारदा पीठ में रह के बोधायन उस ग्रंथ को पढ़ के, और उनके एक शिष्य साथ में थे, उन्होंने एक रात में सारे ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया. क्योंकि उन्होंने ग्रंथ की प्रति बनाने की अनुमति नहीं दी, न ही उनको ग्रंथ को साथ में ले जाने की अनुमति दी. तो रामानुज के शिष्य ने कंठस्थ कर दिया पढ़ के एक रात में. इस तरह की बुद्धि हुआ करती थी उस समय. तो खैर, उस प्रांत के थे ये केशव पंडित, उनका नाम हुआ केशव कश्मीरी. और प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाद में चैतन्य महाप्रभु के से जब उनका पराजय हुआ तो वो वैष्णव बन गए, और फिर वो निम्बार्क संप्रदाय के एक भक्त बन गए. और उन्होंने कौस्तुभ प्रभा ऐसे एक ग्रंथ की रचना की जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर निम्बार्क संप्रदाय की एक टीका है, और जिसको पारिजात भाष्य भी कहते हैं. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति रत्नाकर में ऐसे कहा गया है कि केशव कश्मीरी सरस्वती देवी, जो कि विद्या की देवी हैं, उनके एक प्रिय उपासक थे. और इसलिए सरस्वती देवी की कृपा से वो बहुत बड़े पंडित बन गए, उनका सामना कोई नहीं कर पाया. लेकिन बाद में जब वो वैष्णव बने तो फिर उन्होंने इस ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग लेना वगैरह बंद कर दिया, और केवल वैष्णव भजन और टीका आदि सब करने लगे, शास्त्रों की टीकाएं लिखने लगे. तो चैतन्य भागवत से हम थोड़ा पढ़ते हैं. इन दोनों ग्रंथों के वर्णनों को मिलाकर हम केशव कश्मीरी का जो पराजय हुआ निमाय पंडित के द्वारा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आज, और हो सकता है कल सुबह भी. आज तो तक समाप्त नहीं होगा, तो कल सुबह तक ये चर्चा हम जारी रखेंगे. तो हेनो काले तथा एक महादिग्विजयी आयला परम अहंकार युक्त होई. तो उस समय नवद्वीप में एक महादिग्विजयी आए, केवल दिग्विजयी नहीं महादिग्विजयी, और परम अहंकार युक्त. तो उनके अंदर अहंकार कितना था, थोड़ा सा नहीं था, परम अहंकार, बहुत ज्यादा अहंकारी व्यक्ति थे वो. सरस्वती मंत्रेर कांत उपासक मंत्र जपी सरस्वती कौरी लेक वश. तो सरस्वती मंत्र का वो निरंतर उच्चारण करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने सरस्वती देवी को ही अपने वश में कर लिया था. वश में कर लिया किस प्रकार से, उनको प्रसन्न किया था. देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो उनके मंत्रों का जप करते हैं लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार. जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं उनके मंत्रों का उच्चारण करके. और फिर जब अपने वांछित फल को प्राप्त करते हैं तो उनकी श्रद्धा उस देवी या देवता में बढ़ जाता है. तो खैर, इसी तरह से कांक्षंतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. तो साधारणतः ऐसे जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग ऐसे देवी देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शीघ्र ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति. तो इसी विचार से कि मुझे बहुत विद्या मिले, आध्यात्मिकता का नामो निशान नहीं था, दिग्विजय पंडित के मन में उनकी इच्छा क्या थी कि मैं इतना बड़ा पंडित बन जाऊं कि मैं मेरे सामने कोई भी खड़ा ना हो सके, मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भावना से वो विद्या चाहते थे, परंतु ये भावना नहीं है सरस्वती देवी का मंत्र का उच्चारण करने के लिए। आज भी अनेक पाठशालों में सरस्वती वंदना करते हैं, कौन सा, या कुंदेन्दु तुषार हार द्रवला, है ना, आप सबने शायद बचपन में किया होगा। आप में से कितने भक्तों ने अपने बचपन में पाठशाला में ये मंत्र किया था? अनेक भक्तों ने, आजकल नहीं होता है, आजकल ऐसे नहीं हो रहा है कहीं पे। तो बच्चे साधारणतः उनको ऐसे बताया जाता था, क्योंकि कुछ भी सीखने के पहले सरस्वती माता का आशीर्वाद लेना अच्छा है, ताकि हम अच्छी तरह से अपने पढ़ाई को समझ सकें, गणित समझ सकें, और भूगोल इतिहास जो है भाषाओं को समझ सकें। तो परंतु दिग्विजयी पंडित के मन में भावना क्या थी कि मैं सरस्वती देवी को प्रसन्न करके इतना बड़ा विद्वान बनूंगा कि मैं सारे विश्व को जीत लूंगा। तो उनके मन में अहंकार था, भोग की वृत्ति थी उनकी। तो इस भावना से जब वो सरस्वती देवी के सामने आए तो हमें क्या समझना चाहिए इस संदर्भ में? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही विस्तार में और सुंदरता से बतलाया है कि सरस्वती देवी कौन है और किस प्रकार से उनके विविध प्रकार के उपासक उनके साथ संबंध रखते हैं। तो मूल रूप से सरस्वती देवी कौन है, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वक्ष स्थिता मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन माता। तो सरस्वती कौन है? विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, विष्णु भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है सरस्वती देवी। अर्थात सरस्वती देवी को साधारण देवी देवता की तरह नहीं है, मूल सरस्वती देवी वो साक्षात आध्यात्मिक हैं, साक्षात भक्ति, विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति की मूर्तिमान रूप हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, विष्णु वक्षः स्थिता, वो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित हैं। अर्थात वो कौन है, कौन भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित होती हैं? लक्ष्मी देवी। इसलिए मूर्ति भेदे रमा, और इसलिए वो रमा देवी, रमा देवी अर्थात महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी से वो अभिन्न है, सरस्वती देवी और महालक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है। सरस्वती जगन माता, संपूर्ण जगत की माता है सरस्वती देवी। इस प्रकार से यहाँ प्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि रमा सरस्वती दुर्गा ये सब भिन्न हैं, फिर भी वो वास्तव में श्रीमती लक्ष्मी देवी या श्रीमती नारायणी इनसे अभिन्न हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मूल सरस्वती देवी साक्षात भक्ति की स्वरूपिणी, ये याद रखिएगा। इसलिए सरस्वती देवी के पास जब हम जाते हैं तो विद्या के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो साथ साथ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति की विद्या भी आप प्रदान कीजिए। जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भाषाएं सिखाए, अक्षर आदि, अक्षर अभ्यास आदि किया जाता है, उनको पता होना चाहिए ना, आ ई आदि क्या है, दो गुना दो, तीन गुना तीन क्या है, ये सब पता होना चाहिए। परंतु क्यों पता होना चाहिए? ताकि आगे चल के वो इस संसार में जी सकें और जीते जीते भगवान कृष्ण की भक्ति अच्छी तरह से कर पाएं, वो भगवद गीता श्रीमद् भागवत आदि को पढ़ सकें, समझ सकें इत्यादि। तो आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भाग्यवशे ब्राह्मणेर प्रत्यक्ष होइला त्रिभुवन दिग्विजयी कोरी वर दिला। भाग्यवशे ब्राह्मण प्रत्यक्ष होइला, ब्राह्मणेर प्रत्यक्ष होइला, तो उस ब्राह्मण केशव काश्मीरी का भाग्य था कि प्रत्यक्ष रूप से सरस्वती देवी उनके सामने प्रकट हुई। त्रिभुवन दिग्विजय कोरी वर दिला, और ऐसे वरदान दिया। क्या वरदान दिया केशव काश्मीरी को? त्रिभुवन दिग्विजयी हो। लोग भगवान के पास या किसी देवी देवता के पास जाते ना कोई वरदान से, मुझे धनम दे ही, रूपम दे ही, तो ये क्या होना चाहते थे? दिग्विजयी पंडित दे ही, मुझे चाहिए, मैं बनना है, मुझे दे ही नहीं, मुझे बनना है। तो उस समय सरस्वती देवी ने यह वरदान दे दिया। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कौन से सरस्वती देवी ने इस प्रकार का वरदान दिया? क्या मूल सरस्वती देवी ने दिया, जो कि विष्णु भक्त स्वरूपिणी है, विष्णु वक्षा स्थिता है, मूर्ति अभेदे रमा है, सरस्वती जगन माता है, वो सरस्वती ने क्या ये वरदान दिया? कहते नहीं, क्योंकि जो शुद्ध मूल सरस्वती देवी हैं, उनको ऐसे भौतिक चीजों से क्या लेना देना है। यदि कोई उनके पास जाके भक्ति की विद्या की याचना करे तो वो प्रसन्न होकर देंगी अवश्य, परंतु जब केशव काश्मीरी की तरह कोई जाकर उनके पास ऐसे कोई याचना करे त्रिभुवन दिग्विजयी मुझे बनाइए, तो फिर जो मूल विष्णु भक्ति स्वरूपिणी सरस्वती हैं वो कहती हैं नहीं, फिर उनकी छाया शक्ति है, उनकी छाया रूप हैं, तो सरस्वती देवी की छाया रूप जो है वो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को वरदान प्रदान करती हैं, मूल सरस्वती देवी नहीं करती हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमती सरस्वती देवी जो कि मूर्तिमान आध्यात्मिक ज्ञान है, वो अपनी सही पहचान ऐसे लोगों से छुपा के रखते हैं जो कि घमंडी हैं, मूर्ख हैं, भौतिक भोग से आसक्त हैं और जिनका अहंकार बहुत ज्यादा है और केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने सरस्वती देवी अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं करती हैं। तो ऐसे लोगों के सामने छाया सरस्वती आती हैं। आपको याद होगा कि थोड़े हफ्तों पहले हम एक लीला की बात कर रहे थे जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के घर में थे जो राम भक्त थे, और वो बहुत उदास थे कि रावण सीता देवी का अपहरण करके ले गया था, और चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण के एक श्लोक से उनको प्रमाण दिखलाया। क्या प्रमाण दिखलाया? कि वास्तव में जिस सीता देवी का स्पर्श रावण ने किया वो मूल सीता देवी नहीं थी, मूल सीता देवी तो अग्नि देवी के पास गए, अग्नि देवी ने उनकी रक्षा की वहां पर, और अग्नि देवी ने एक मिथ्या सीता जिसको माया सीता कहते हैं उनको प्रकट किया। तो जिस सीता देवी का अपहरण रावण ने किया वो माया सीता थी, क्योंकि रावण जैसा जो दुष्ट व्यक्ति है जिसका आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, और ये तो बहुत दूर की बात है कि मूर्तिमान लक्ष्मी देवी सीता देवी का वो स्पर्श कर सके, ऐसे संभव है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि सीता देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी सब एक ही तत्व हैं, शक्ति तत्व हैं श्री कृष्ण के, और इन सब के मूल हैं श्रीमती राधा रानी। अंततः जितने भी गोपियां हैं, शक्तियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से जो सरस्वती देवी दिग्विजय पंडित के सामने आई वो छाया सरस्वती थी। तो दूसरे शब्दों में जो मूल सरस्वती देवी हैं उन्होंने अपना स्वरूप ढक दिया और उन्होंने देखा कि ये तो व्यक्ति बड़ा भौतिकतावादी व्यक्ति है तो उसको जैसे चाहिए वैसे मैं बर्ताव करूंगी तो इसलिए ऐसे हुआ। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शुद्धा सरस्वती अर्थात जो मूल सरस्वती देवी है विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वो क्या करती हैं कि जो व्यक्ति उनके वास्तविक उपासक हैं और उन जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं वो उनको भ्रम में डाल देते हैं और उनको भ्रमित करते हैं। कैसे? उनको भौतिक ज्ञान देके भौतिक विद्वत्ता प्रदान करके और इतना मोहित करते हैं उनको कि कोई भी उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे भी दें भले वो लोग तथा कथित इतने बड़े पंडित होते हैं फिर भी इन सीधे सीधे बातों को समझ नहीं सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि चार प्रकार के लोग कभी भी उनके शरण में नहीं आते हैं। कौन सा है वो श्लोक? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहरिता ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो ये चार प्रकार के लोगों में से एक है मायया पहरिता ज्ञाना, जिनका ज्ञान का अपहरण हो चुका है माया के द्वारा। तो ठीक उसी प्रकार से दिग्विजय पंडित का ज्ञान भी शुद्धा सरस्वती मूल सरस्वती देवी ने अपहरण कर लिया। और क्योंकि दिग्विजय पंडित के मन में भगवान कृष्ण की भक्ति करने की कोई इच्छा नहीं थी इसलिए इसलिए सरस्वती देवी ने क्या किया कि उन्होंने भ्रमित कर दिया केशव काश्मीरी को। क्या करके? भौतिक ज्ञान में विद्वत्ता प्रदान करके। और हम देखते हैं कि आधुनिक काल में इतने बड़े बड़े पंडित तथा कथित पंडित होते हैं विश्वविद्यालयों से बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर ली होती हैं उन्होंने परंतु भगवान में भगवान के शास्त्रों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास होने की बात तो दूर रही इतना अविश्वास है और इतनी घृणा है कि किसी न किसी प्रकार से कैसे वो इस आध्यात्मिक मार्ग को इस भागवत धर्म की निंदा कर सकें उसका प्रयास करते हैं। और ये लोग भी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी नास्तिक लोग ना इतने बुद्धिमान होते हैं अब उनके पास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतने कुशलता से वो तर्क करेंगे वाद करेंगे कि बड़े बड़े भक्त भी भ्रमित हो जाएंगे। अरे ऐसा है क्या? और कभी कभी इस तरह का जो वाद है मायावादी लोग भी करते हैं शब्दों को आगे पीछे करने में तरह तरह से अलंकृत रूप से प्रस्तुत करने में बहुत निपुण रहते हैं। ये सब छाया सरस्वती के वरदान है और इस तरह से जो सरस्वती देवी है उनको भ्रमित कर देती हैं और उनको जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के रहने के लिए बाध्य करती हैं। तो आगे चल के मृत्यु के बाद इनकी दुर्गति होती है इन लोगों की। परंतु जो वास्तव में कृष्ण भक्त होते हैं वो इस प्रकार किसे दिग्विजय पंडित होना नहीं चाहते हैं। भक्त चाहे पंडित हो न हो यदि भक्त इतना जानता हो कि श्री कृष्ण वासुदेव है सर्वमिति वो महात्मा हो जाता है स महात्मा सुदुर्लभ और श्रद्धा पूर्वक वो श्री कृष्ण की सेवा करने लगता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन आदि करता है और उसका जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम ये बना लेता है तो सबसे बड़ा पंडित है वो व्यक्ति भले वो स्कूल में दूसरी तीसरी कक्षा से आगे न पढ़ा हुआ हो। इसकी तुलना में इसके विरोध में दूसरा कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित हो परंतु भगवान के बारे में कोई श्रद्धा नहीं हो वो वास्तव में अनपढ़ है। विद्या का अर्थ है जो आगे चल के हमें सच्चा आनंद प्रदान करे, जो हमें दुख से सदैव मुक्त कर ले, हमें ऐसे स्थान में स्थित कर ले जहां पे कभी भी हमें दुख नहीं प्राप्त हो भविष्य में। तो ऐसी विद्या एक ही है, भक्ति की विद्या। भक्ति की विद्या छोड़कर अन्य जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं वो सब जड़ विद्या है। तो जड़ विद्या हमें उतनी ही पढ़नी चाहिए जितना कि हमारे भक्ति की विद्या के लिए अनुकूल है। इस संसार में जीने के लिए थोड़ी बहुत विद्या तो जड़ विद्या भी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे रह सकते हैं हम। तो खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरस्वती देवी ने इस प्रकार से अपने ही उपासक को भ्रम में डाल दिया। और देवी देवता भी कभी कभी ऐसे करते हैं अपने उपासकों के साथ। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जारा दृष्टि पात मात्र होए विष्णु भक्ति, दिग्विजयी वरवा ताहना कौन शक्ति। जार दृष्टिपत मात्रे, जिनके दृष्टिपात मात्र से, जिनकी दृष्टि अपने ऊपर पड़ने से होय विष्णु भक्ति, जो सरस्वती देवी विष्णु भक्ति स्वरूपिणी, उनकी दृष्टि मात्र हमारे ऊपर पड़े तो हम भक्त बन सकते हैं, तो ऐसी उनकी शक्ति है। तो ऐसे सरस्वती देवी के लिए किसी को दिग्विजय पंडित बनने का वरदान देना ये कौन सी कठिनाई की बात है। तो ये बिल्कुल कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए सरस्वती देवी को ऐसे भौतिक विद्या का वरदान देना बहुत ही आसान है, और सरस्वती देवी के दृष्टि से ये बहुत तुच्छ है। अभी जो भक्त हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं या किसी भी अन्य प्रामाणिक संस्था से जुड़े हुए हैं, जो प्रामाणिकता से अधिकृत रूप से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं शास्त्रोक्त पद्धति से, तो भले वो शास्त्रों में भी ज्यादा ज्ञानी हो या न हो, परंतु वो भगवान के दृष्टि से बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। और ये तुच्छ नहीं है। यदि कोई भक्त को ज्यादा श्लोक नहीं बोल पाए या ज्यादा शास्त्रों के आधार पे तर्क न कर पाए, कोई बात नहीं, परंतु उस भक्त के हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं, यदि उत्तर हां है तो फिर वो बड़े बड़े पंडितों से श्रेष्ठ है। और दूसरी ओर जो बड़े बड़े संस्कृत के भी पंडित हों या अन्य भौतिक विषयों के पंडित हों, उनका ज्ञान तुच्छ माना जाता है। और ये किसका मत है? सरस्वती देवी का मत है। तो जब ऐसा एक वरदान दिग्विजयी पंडित को मिल गया तो क्या परिणाम हुआ? पाई सरस्वती साक्षाते वरदान, संसार जिनिया विप्र भूले स्थाने स्थान। पाई सरस्वती साक्षाते वरदान, साक्षात जब उनके सामने प्रकट होकर सरस्वती देवी ने उनको वरदान दिया तो क्या हुआ? संसार जिनिया, संसार को जीतकर विप्र बुले स्थान स्थान। तो जहां भी वो जाते थे उस स्थान के बड़े बड़े पंडितों को वो हरा देते थे। ये सरस्वती देवी के वरदान का फल हुआ उनके लिए। और किस तरह की विद्वत्ता प्राप्त हुई उनको? सर्वशास्त्र जिह्वाय ऐसे निरंतर, हेम नहीं जगते यही दिव्य का उत्तर। सर्वशास्त्र जिह्वाए ऐसे निरंतर, सारे शास्त्र उनके जीभ पे निवास करते थे। अर्थात पट 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 जो कोई भी शास्त्र का नाम लीजिए कंठस्थ थे उनको। हजारों हजारों लाखों लाखों श्लोक उनके कंठ उनके जीभ पे उपस्थित थे, जब पहे अमृत धारा गंगा धारा की तरह पड़ 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 बोल सकते थे। इस तरह की विद्वत्ता उनके अंदर थी। हेनो नाही जगते जे दीबे का उत्तर, और ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जो उनके सामने उत्तर दे सके, कुछ उनका सामना कर सके। जारा कक्षा मात्र नहीं बुझे कोनो जने, दिग्विजयी होई बुले सर्वस्थाने स्थाने। जो बड़े बड़े विद्वान थे वो उनके प्रश्नों को भी समझ नहीं सकते थे, तो उनको सामना करने की तो बात दूर रही। और फिर क्या हुआ, फिर दिग्विजय पंडित ने सोचा, अरे मैं तो सब जगह भारतवर्ष में घूम चुका हूं और हर स्थान के पंडित को मैंने हरा दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि बंगदेश बंगाल में नवद्वीप नाम का स्थान है जहां पे बड़े बड़े पंडित निवास करते हैं, तो मेरा नाम दिग्विजय पंडित साकार करने के लिए मुझे वहां जाना चाहिए। जब नवद्वीप के बड़े बड़े भट्टाचार्यों को और मिश्रों को और उपाध्यायों को आदि मैं हराऊंगा, तब जाकर मेरा नाम सार्थक होगा कि मैं दिग्विजय पंडित हूं, तो मुझे वहां जाना चाहिए। और जब वहां पर आने की खबर मिली तो कैसे आए, वो घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ के आए, साथ में बहुत सारे घोड़े और उसके कितने सारे अनुयायी, बैंड बाजा बज रहा था, दिग्विजय पंडित पधार रहे हैं, कौन है पंडित बड़े बड़े नवद्वीप के सामने, आइए आइए। और ये जब जय घोष सुना सारे पंडितों ने वहां पे, तो सब कांपने लगे डर से, तो घर घर में उत्पात हो गया। तो हर जगह ये सुनाई पड़ा नवद्वीप के सड़कों में कि ऐसे एक दिग्विजय पंडित नवद्वीप में आए हैं और एक विजय पात्र उन्होंने सारे बड़े बड़े विद्वानों से प्राप्त कर लिया है, और हमने ऐसे सुना है कि साक्षात सरस्वती देवी की कृपा उनको प्राप्त हो गई है। और यदि दिग्विजय पंडित नवद्वीप में विजयी हो गए तो सारे दुनिया के विद्वान हमें कोसेंगे, हमें धिक्कार करेंगे, अरे तुम कैसे लोग हो, हमें तो उन्होंने हरा दिया लेकिन आप तो नवद्वीप के निवासी हो, आप भी हार गए। तो वो सोचने लगे कि कौन ऐसे व्यक्ति के साथ वाद करने के लिए सक्षम होगा जिसको कि सरस्वती देवी की कृपा प्राप्त हो गई है, और हमने सुना है कि सरस्वती देवी उनके जीवा पर निवास करती हैं, तो एक मनुष्य उनके साथ कैसे वाद कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े भट्टाचार्य थे, भट्ट आचार्य उपाध्याय इत्यादि, वो सब कोई ना कोई बहाना बना के इधर उधर चले गए। किसी ने कहा कि अरे मेरे रिश्तेदार की शादी है, मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। किसी ने कहा अरे कुछ मेरे रिश्तेदार बीमार है, दूसरे गांव में वहां मुझे जाना है। ऐसे करके सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और वो इधर उधर चले गए। तो निमाय पंडित के शिष्यों ने भी सुना ये सब, तो जाके निमाय पंडित से उनको खबर दे दी कि देखो ऐसे ऐसे है, सरस्वती देवी के कृपा पात्र एक दिग्विजयी पंडित यहां पर आए हैं और अपने विजय पात्र को, जय पात्र को साथ में लेकर, जय पत्र को लेकर आए हैं साथ में, और घोड़े पालकी हाथी सब साथ में हैं, और यदि कोई उनका सामना नहीं करना चाहता है तो जय पत्र देना चाहिए उनको। तो अपने शिष्यों की या छात्रों की बातों को सुनकर निमाय पंडित मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने कहा, अभी निमाय पंडित के उपदेशों को सुनना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो निमाय पंडित ने क्या उत्तर दिया, सुनो भाई सब एको ही तत्व कथा, अहंकार ना सही ने ईश्वर सर्वथा। तो निमाय पंडित ने कहा, सुनो भाई, सब लोग सुनो, एक मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा, भगवान कभी भी अहंकार को सहन नहीं करते हैं। जय जय गुणमत्त होई कोरे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा कोरे न संहार। जय जय गुणे मत्त होए कोरे अहंकार, जब किसी को अहंकार होता है ना तो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे कोई गुण होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे अंदर है ऐसे। तो जब किसी के अंदर कोई गुण होते हैं और अन्यों से अधिक मात्रा में वो गुण विद्यमान होते हैं उस व्यक्ति के अंदर, तो उसको थोड़ा अहंकार हो जाता है। जैसे किसी को विद्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो सोचने लगता है मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा मेरे अंदर विद्या है। तो कोई बहुत ज़्यादा बलवान है तो सोचता है कि मैं सबसे बलवान हूँ, तो बल उसके बल का अहंकार हो जाता है। किसी को धन का अहंकार, किसी को सौंदर्य का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार। तो ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के हृदय में अहंकार की भावना उत्पन्न होती है। तो निमाय पंडित कहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उस अहंकार को निकाल देते हैं, उस गुण में, उस गुण को ही, गुण के ऊपर ही आक्रमण करते हैं, उस गुण को ध्यान में रखते हुए उसके अहंकार को चूर कर देते हैं। और अभी आप ये श्लोक मेरे पीछे पीछे बोलिए, ठीक है? ये प्रतिवर्ष प्राय मैं इस श्लोक को बोलता हूं। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुक्षण। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुक्षण। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुक्षण। फलवंत वृक्ष, जिस वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, और गुणवंत जन, जिस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं। अब दोनों की तुलना की गई है, किन दो चीजों में तुलना की गई है? फलवंत वृक्ष, ऐसे वृक्ष जिसमें बहुत सारे फल हैं, और दूसरा एक ऐसे व्यक्ति जिसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। आगे क्या, नम्रता से ताहारा स्वभाव अनुक्षण। तो उन दोनों का स्वभाव क्या है? नम्रता। क्यों नम्रता, कैसे? तो इसमें फलवंत वृक्ष की तुलना किस तरह से की गई है? जब किसी वृक्ष के अंदर बहुत सारे फल होते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती है ना, फलों के वजन के कारण। परंतु यही जो वृक्ष होते हैं सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इतने लाभदायक स्वादिष्ट मीठे फल होते हैं इस वृक्ष के ऊपर। तो ऐसे वृक्ष बहुत मूल्यवान होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मनुष्यों के लिए। परंतु इतना मूल्यवान और योग्य होने के बाद भी ये वृक्ष कैसे रहते हैं? नम्र रहते हैं। क्यों? फलों के वजन के कारण झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों में कोई अच्छे गुण हैं, भक्ति के रास्ते में भी हम यदि भक्त भी हों, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छे गुण हैं। जैसे कोई अच्छी तरह से जप करते हैं बिना सोए हुए, कोई अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों के, कोई अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं, कोई अच्छी तरह से रसोई करते हैं, कोई अच्छी तरह से भगवान के विग्रह का श्रृंगार करते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं भक्तों में भी, जो सारे भक्तों में नहीं है। परंतु यदि वो भक्त सोचे कि देखो मैं विशेष हूं, ये अन्य भक्त मेरी तरह से ऐसे नहीं कर सकते हैं, मेरे अंदर ऐसा गुण है जो कि अन्यों के अंदर नहीं है, तो जैसे महाप्रभु ने कहा है, तो भगवान ऐसे भाव को देखकर बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे भाव। और आज नहीं तो कल भगवान उस व्यक्ति को या उस भक्त को उस अहंकार से मुक्त कर देंगे। परंतु अहंकार को मुक्त करने की पद्धति कभी कभी दर्ददायक होती है। तो गुणवंत जन यदि वास्तव में गुणवंत है तो कैसे होना चाहिए? नम्रता उसका स्वभाव होना चाहिए, उसे भी झुकना चाहिए एक फलवंत वृक्ष की तरह है, अर्थात उसे भी नम्र होना चाहिए सबके साथ, कभी अहंकार अपना प्रकट नहीं करना चाहिए अन्यों के सामने। देखिए बहुत सुंदर बात है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिर निमाय पंडित ने थोड़े उदाहरण दिए। हय हय नहुषवेन बाण नरक रावण महादिग्विजय सुनी याचा जे जे जन। तो फिर निमाय पंडित ने अपने छात्रों को इतिहास के, प्राचीन इतिहास के अनेक दिग्विजयों का उदाहरण दिया। कौन से ये दिग्विजय थे? हाय हाय नहुष वेण बाण नरक रावण। अभी यहां किन लोगों की चर्चा चल रही है? अभी केशव काश्मीरी कौन थे? ब्राह्मण थे। और जितने भी पंडित जिनके साथ उन्होंने वाद किया या जिनके साथ करना चाहते थे, वो सब कौन थे? ब्राह्मण थे। जिन लोगों का नाम लिया निमाय पंडित ने, ये कौन थे? क्या ये ब्राह्मण थे? हाय हाय वेण बाण, बाणासुर कौन थे? किनके पुत्र थे? किसी को ने कृष्ण बुक नहीं पढ़ा है? बाणासुर वो नरकासुर हो गए। बाणासुर किनके पुत्र थे? ठीक है, एक एक से सब नाम लेते हैं। हय हया, हय हया का और एक नाम है कार्तिवीर अर्जुन। उनके 1000 भुजाएं थीं, परंतु दत्तात्रेय भगवान के कृपा से उनको ऐसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुईं, फिर भी परशुराम के द्वारा उनका पराजय हो गया, क्योंकि इनके अंदर भी थोड़ा अहंकार आ गया। उसी तरह से नहुष ने ऋषियों का अपमान किया, और यद्यपि वो बहुत ऊंचे स्तर पे थे फिर भी उनको शाप मिला, उन्मत्त होकर वो उनका पतन हो गया, उनको सांप बनना पड़ा। वेन के बारे में तो हम सब ने सुना है श्रीमद् भागवत से कि महाराज अंग के पुत्र थे, उन्होंने सारे समाज के प्रति, भगवान विष्णु के बनाए हुए धार्मिक व्यवस्था के प्रति खूब प्रहार किया, और इसलिए सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उनका संहार कर दिया, उनको खत्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार से बाणासुर, बाण ये बलि महाराज के पुत्र थे, बलि महाराज बहुत बड़े भक्त थे, स्वयं बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो बाणासुर शिवजी के बड़े उपासक थे, परंतु अंततः भगवान कृष्ण ने उनके अभिमान को भंग कर दिया। उसी तरह से नरकासुर स्वयं भगवान वराहदेव और भूमि देवी के पुत्र थे, फिर भी उनकी हत्या करनी पड़ी भगवान को। तो रावण का नाम भी हम सब ने सुना है, रावण का जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गुण से थे वो असुर। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब दिग्विजय या महादिग्विजय की बात होती है तो क्षत्रियों के लिए है वो जो कि अपने बल के द्वारा सारे दिशाओं को के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। महादिग्विजय वैश्य ऐसे होते हैं जो अपने धन के द्वारा सारे दिशाओं को वश में कर सकें, और महादिग्विजयी ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो अपने विद्या के द्वारा सारे दिशाओं को जीत सकें। तो ये किस प्रकार के महादिग्विजयी पंडित थे? ब्राह्मण दिग्विजयी पंडित। परंतु निमाय पंडित बता रहे हैं चाहे भी किसी भी तरह का महादिग्विजयी क्यों न हो, यदि उसके अंदर अहंकार आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका संहार होगा, उसके घमंड का अभिमान हो जाएगा। तो इसलिए ये सोचो मेरे मित्रों, ऐसे कौन है घमंडी व्यक्ति जिसके घमंड का घमंड चूर नहीं हुआ होगा इतिहास में? तो अब देखोगे कि ये दिग्विजय पंडित का जो घमंड है वो भी यहां नवद्वीप में चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार से निमाय पंडित मुस्कुराने लगे और शाम को अपने छात्रों को लेकर गंगा के तट पर बैठे। और किस प्रकार से वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्करी वोशिले न शिष्य संगे गौरांग श्री हरि। गंगा जल स्पर्श करी आचमन किया, गंगा जी को नमस्कार भी किया और आचमन करके फिर क्या हुआ, वोशिले न शिष्य संगे गौरांग श्री हरि। तो श्री गौर हरि अपने शिष्यों के साथ में गंगा के तट पे बैठ गए सायंकाल के समय। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके गंगा तीरे भोषिया आछे न प्रभु सुखे। तो बड़े सुख से निमाय पंडित धर्म कथा शास्त्र कथा कर रहे थे और बहुत ध्यान से सारे उनके शिष्य उनके छात्र सुन रहे थे अवाक होकर कि कैसे कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीव्र है। तो यद्यपि और आगे चल के दिग्विजय पंडित के बारे में निमाय पंडित ने कहा नहीं, परंतु अपने मन में ही वो सोच रहे थे कि कैसे ये मैं दिग्विजय पंडित को हराऊं, ये ब्राह्मण जो है ये बहुत घमंडी बन गया है, क्योंकि ये सोच रहा है कि मेरा सामना करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अब देखिए निमाय पंडित की विचारधारा, वो सोचने लगे यदि भरी सभा में मैंने केशव काश्मीरी का पराजय किया तो ये पराजय केशव काश्मीरी के लिए मृत्यु तुल्य हो जाएगा, सब लोग उपहास करेंगे, सब लोग मजाक उड़ाएंगे, सब लोग निंदा करेंगे उसकी, और उसका जो धन है वो सब छीन के ले जाएंगे और इस प्रकार से बहुत दुखद अवस्था में उसका निधन हो जाएगा। तो इसलिए दुख न पाए बे विप्र गर्व हो बे क्षय विरल से कोरी बाना दिग्विजय लाया जाया। तो मैं ऐसे करूंगा, उसको हराना तो है ही मुझे, ये निश्चित बात है, परंतु इस प्रकार से हराऊंगा कि उसे दुख भी नहीं होगा साथ साथ उसका गर्व भी क्षीण हो जाएगा। तो देखिए ये विशेषता, इसके बारे में कल भी हम चर्चा कर चुके थे, जब महाप्रभु अन्य पंडित को हराया करते थे नवद्वीप में इतने मीठे ढंग से करते थे कि जो विद्वान उनके सामने हार जाता था उसको बुरा नहीं लगता था, अन्य ब्राह्मणों के सामने जब वो हार जाते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था, वो अपमानित हो जाते थे, परंतु निमाय पंडित इतने सुंदर ढंग से और मीठे ढंग से बात करके उनको हरा देते थे और उनको अपमानित नहीं करते थे कि वो सब लोग खुश होकर वापस जाते थे और उनको वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इस लड़के में इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान कैसे आया। तो निमाय पंडित सोच रहे थे कि ठीक है हराऊंगा तो सही, परंतु इस तरह से हराऊंगा कि गर्व को नष्ट करने के साथ साथ उसको दुख में नहीं दूंगा। तो जब निमाय पंडित गंगा के तट पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहे थे, तो फिर रात्रि का समय आ गया, सूर्योदय हो गया और वृंदावन दास ठाकुर निमाय पंडित के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रवती किब शोभा होया आछे न भागीरथी, शिष्य संगे गंगा तीरे आछे न ईश्वर, अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर। परम निर्मल निशा, निशा अर्थात रात्रि, परम निर्मल अर्थात कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं, तूफान नहीं, कुछ नहीं, रात्रि बिल्कुल निर्मल थी और पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की रात्रि, पूर्ण चंद्रवती। किबा शोभा होय आछेन भागीरथी, तो भागीरथी गंगा उस पूर्णिमा के चांद के किरणों में गंगा का जल बहुत ही रमणीय मनोरम लग रहे थे। तो शिष्य संगे गंगा तीरे आछिन ईश्वर, अब अपने शिष्यों के संग में निमाय पंडित गंगा के तट पे बैठे थे। अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर, उनका रूप कैसे लग रहा था? मनोहर, सबका मन, सारे ब्रह्मांड का मन हरण करने जितना सुंदर श्री निमाय पंडित का रूप था। आखिर वो कौन थे? कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, साक्षात भगवान है ना। इसलिए श्री कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, अवतारी हैं, तो निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु भी तो अवतारी ही हैं। मुक्ताजिनी हास्य युक्त श्री चंद्र वदन अनुक्षण, निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन। हास्य युक्त श्री चंद्र वदन अनुक्षण, तो उनका मुखारविंद अलंकृत था, सुशोभित था। किस चीज से? हास्य, एक सुंदर मुस्कान से। निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्री नयन, और उनके सुंदर आंखों से वो कृपा दृष्टि सबको दे रहे थे। मुक्त जिनी श्री दर्शन अरुण अधर, दयामय सुकोमल सर्व कलेवर। तो उनके जो दांत थे वो मोतियों के समान सुंदर लग रहे थे, और उनका उनके जो अधर थे वो अरुण रंग के थे, हल्के लाल रंग के थे। सूर्योदय के पहले जिस जैसे कि सूरज का रंग होता है, वैसे उनके अधरों का रंग था। दयामय सुकोमल सर्व कलेवर, करुणा से पूर्ण थे, और उनके शरीर के, दिव्य शरीर के जितने भी अंग थे वो बहुत कोमल थे। श्रीमस्तक सुवलित चंचर श्री केश, सिंह ग्रीव गज स्कंद विलक्षण वेश। श्रीमस्तक सुवलित चंचर श्री केश, तो उनका जो सर है वो अलंकृत था काले घुंघराले बालों से, और उनका उनका जो आभरण था, जो उनके वस्त्र थे, वो भी दिव्य थे, और उनकी गर्दन एक सिंह की तरह के गर्दन के समान थी, और उनके जो कंधे हैं वो एक हाथी के कंधों के समान थे। सुप्रकांड श्री विग्रह सुंदर हृदय, यज्ञ सूत्र रूपे ताहि अनंत विजय। उनका शरीर बहुत बड़ा था और उनका आकर्षक वक्ष स्थल अनंत देव के से अलंकृत था, एक यज्ञोपवीत के रूप में। श्री ललाटे ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, अजानुलंबित दुई श्री भुज सुंदर। तो उनके कपाल के ऊपर, ललाट के ऊपर एक बहुत सुंदर तिलक था, और उनकी जो सुंदर भुजाएं हैं नीचे तक पहुंच रही थी, घुटनों तक। योगपट्ट छांदे वस्त्र कोरिया वंदन, वाम उरु माझे ठुई दक्षिणा चरण। तो योगपट्ट जैसे सन्यासी लोग पहनते हैं, वैसे योगपट्ट उन्होंने पहना हुआ था। वाम उरु माझे ठुई दक्षिणा चरण, तो उन्होंने अपने बाएं जंघे के ऊपर अपना दाहिना पांव रखा था और बड़े आराम से बैठे थे। इसको वीरासन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जिसको अपने शक्ति और अपने स्थान के का विशेष निश्चय होता है तो इस तरह से बैठते, जैसे राजा बैठता है जिसने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो निमाई पंडित ऐसे वीरासन में विराजमान थे इधर, और वो क्या कर रहे थे, शास्त्रों का विश्लेषण कर रहे थे, कभी कभी सत्य वाक्यों को असत्य साबित कर रहे थे, कभी कभी असत्य वाक्यों को सत्य साबित कर रहे थे, और सभी लोग चकाचौंध हो रहे थे सुन के कि किस तरह से वो कर रहे हैं। और एक बहुत मनोरम सुशोभन दृश्य वहां पे था, और ठीक उसी समय वहां पर कौन आ पहुंचे, केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित। और जब वो वहां पर पहुंचे तो फिर क्या हुआ, यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको कल सुबह आना होगा 8 बजे, फिर इस कथा को हम कल जारी रखेंगे। श्री निमाय पंडित की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। तो गौर कथा 2022 के दूसरे दिन हुई कथा में आप सबका स्वागत है, और आज की कथा के लिए हम धन्यवाद देते हैं महाराज जी को 3 बार जोर से स्वागत, हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही पावन दिवस है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, जिसे हम गौर पूर्णिमा कह के बोलते हैं। तो कल के कार्यक्रम इस प्रकार से है, तो कल सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी। भक्तों से निवेदन है कि कृपया अधिक संख्या में आप मंगल आरती में आइए। 5:15 से 7:15 बजे तक हरिनाम का जप होगा, 7:30 बजे भगवान के श्रृंगार दर्शन होगा, 8 बजे सुबह गौर कथा होगी और महाराज जी गौर कथा करेंगे। भक्तों से निवेदन है कल चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए चंद्रोदय तक उपवास, निर्जल उपवास रखिए, और शाम को जब भक्त यहाँ पर मंदिर आएंगे तो आते वक्त आप चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कुछ भोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन भोग यहाँ पे आपको 5 बजे तक लाके देना है। कल शाम के कार्यक्रम इस प्रकार से है, शाम 6 से 6:30 बजे तक वहां पे शिशि गौर नेताय के विग्रहों का अभिषेक होगा, और 6 से 6:30 बजे तक जो अभिषेक होगा वो दीक्षित भक्त करेंगे। 6:30 से 7 बजे का जो अभिषेक का समय है वह इन भक्तों द्वारा होगा जिनके अभी तक हरिनाम दीक्षा नहीं हुई है। तो आप जानते हैं कि हर साल केवल गौर पूर्णिमा का एक दिवस होता है, जिस दिवस पे दीक्षित तथा जिन भक्तों की दीक्षा ना भी हुई है सारे भक्तों को गौर नेताय के विग्रह का अभिषेक करने का एक मौका मिलता है। लेकिन याद रखिए कि जो भक्त यहाँ पे अभिषेक करने के लिए आएंगे वे कृपया वैष्णव पोशाक में आए। अभिषेक के पश्चात 7:15 बजे फिर से गौर कथा होगी, और रात्रि कथा के पश्चात शिशि गौर नेताय की आरती और सबके लिए महाप्रसाद होगा। तो कृपया दिन भर होने वाले इन कार्यक्रमों में आप सब उपस्थित रहिए। आज का प्रसाद हम पुरस्कृत किया है इन भक्तों ने, चिरंजीव बलराम तथा लाल कृष्ण कड़लकर और उनके परिवार की तरफ से। तो बहुत आभारी है कड़लकर परिवार के, और उनको धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और एक भक्त है, उनका नाम है श्रीमान विरूपाक्ष यमकन मरडी। तो इन्होंने आज का प्रसाद हम पुरस्कृत किया है उनकी बहन डॉक्टर श्रीमती सौंदर्या नीरज उनकी स्मृति में। कुछ ही दिन पहले श्रीमती सौंदर्या नीरज इनका देहांत हुआ है, तो उनकी स्मृति में उन्होंने आज का प्रसादम पुरस्कृत किया है। तो श्रीमान विरूपाक्षी हेमकंद मरडी या उनके परिवार के कोई सदस्य है कृपया आप आगे आइए। तो हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर श्रीमती सौंदर्य या नीरज को अपने चरणों में स्थान दे और उनको भी हम धन्यवाद देते हैं तीन बार हरि बोल कहके। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। अब दर्शन करेंगे और सबके लिए उसके पश्चात महाप्रसाद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे।